राधा माधव कुंज
बिहारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय 15वां श्लोक। इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यः सः च मे प्रियः। यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मानोद्विजते लोको नोद्विजते लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् जिससे न कभी नहीं उद्विजते उद्विग्न होते हैं लोकः लोग लोकात
लोगों से
न
कभी नहीं
उद्विजते
विचलित होता है
च
भी
यह
जो
हर्ष
सुख
अमर्ष
दुख
भय
भय
उद्वेगय ही
तथा
चिंता से
मुक्त
मुक्त
यह
जो
सह
वह
च
भी
में
मेरा
प्रिय
प्रिय।
अनुवाद और तात्पर्य
श्रील प्रभुपाद द्वारा।
अनुवाद,
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता
तथा
जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता,
जो
सुख दुख में
भय
तथा चिंता में
समभाव
रहता है,
वह
मुझे
अत्यंत
प्रिय है।
तात्पर्य,
इस श्लोक में
भक्त के
कुछ अन्य
गुणों का
वर्णन हुआ है।
ऐसे
भक्त द्वारा कोई
व्यक्ति
कष्ट
चिंता
भय या
असंतोष को
प्राप्त नहीं होता,
क्योंकि
भक्त
सबों पर
दयालु
होता है।
अतएव
वह
ऐसा कार्य
नहीं करता
जिससे
किसी को
चिंता हो।
साथ
ही
यदि
अन्य लोग
भक्त को
चिंता में
डालना
चाहते हैं
तो वह
विचलित नहीं
होता।
यह
भगवत
कृपा ही है
कि वह
किसी
बाह्य उपद्रव
से
क्षुब्ध
नहीं होता।
वास्तव
में सदैव कृष्ण
भावनामृत
में लीन रहने
तथा
भक्ति
में रत
रहने के
कारण ही
ऐसे
भौतिक
उपद्रव
भक्त
को विचलित
नहीं कर पाते।
सामान्य
रूप से
विषयी
व्यक्ति
अपने
शरीर
तथा इंद्रिय
तृप्ति के लिए
किसी
वस्तु को
पाकर
अत्यंत
प्रसन्न
होता है,
लेकिन
जब वह देखता
है
कि
अन्यों के पास
इंद्रिय तृप्ति
के लिए
ऐसी
वस्तु है
जो
उसके पास
नहीं है,
तो
वह
दुख
तथा
ईर्ष्या
से
पूर्ण
हो जाता है।
जब
वह
अपने
शत्रु
से
बदले
की शंका
करता है
तो
वह
भयभीत
रहता है,
और
जब वह
कुछ
भी करने
में
असफल
नहीं होता
मैं
सफल नहीं होता
तो
निराश
हो जाता है।
ऐसा
भक्त
जो
इन समस्त
उपद्रवों
से
परे
होता है
कृष्ण
को
अत्यंत
प्रिय
है।
ओम
अज्ञानतिमिरांधस्य
ज्ञानांजन
शलाकय
चक्षुरोन्मीलितं
येन
तस्मै
श्रीगुरवे
नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं
येन
भूतले
स्वयं
रूप
कदा
मह्यं
ददाति
स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं
श्रीगुरुः
श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून्
वैष्णवांश्च
श्रीरूपं
साग्रजातं
सहगणरघुनाथान्वितं
तं
सजीवम्
साद्वैतं
सावधूतं
परिजनसहितं
कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधा
कृष्णपादां
सहगणललिता
श्रीविशाखान्वितांश्च।
नमो
ॐ विष्णुपादाय
कृष्णप्रेष्ठाय
भूतले
श्रीमते
भक्तिवेदान्तस्वामिनिति
नामिने।
नमस्ते
सारस्वते
देवे
गौरवाणी
प्रचारिणे
निर्विशेष
शून्यवादी
पाश्चात्यदेशतारिणे
वांछाकल्पतरुभ्यश्च
कृपासिन्धुभ्य
एव च
पतितानां
पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो
नमो नमः।
जय
श्री कृष्ण
चैतन्य
प्रभु
नित्यानंद
श्री
अद्वैत
गदाधर
शिवासादि
गौर भक्तवृंद।
हरे
कृष्णा
कृष्ण
कृष्णा
हरे हरे,
हरे
राम
राम राम
हरे हरे।
हरे
कृष्णा।
भगवान
श्री कृष्ण
भगवद्गीता
के बारहवें अध्याय में जिसका शीर्षक है भक्ति योग, ये बतला रहे हैं कि भक्त वो होता है जिनके गुणों को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को कौन सी चीज प्रिय है, भगवान किन चीजों को देखकर प्रसन्न होते हैं, ये सब भक्तों के लिए विचार करने योग्य विषय हैं। क्योंकि भक्त वो होता है जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। यदि सार देखा जाए तो यही है, भगवान को अहेतुकी रूप से बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई मतलब के, जो केवल प्रेम के कारण भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो सच्चे भक्त होते हैं। तो ऐसी भावना जब भगवान भक्त के हृदय में देखते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भले उस भक्त के हृदय में ज्यादा ज्ञान नहीं हो, ज्यादा वो कोई पंडित न हो, या वो इतनी क्षमता उसमें नहीं है कि भौतिक दृष्टि से वो बहुत कुछ अद्भुत कार्य कर दिखाए दुनिया के सामने, परंतु भगवान हृदय को देखते हैं। और मुख्य जो लक्षण भक्त के अंदर दिखने चाहिए उनका वर्णन या उल्लेख यहां पर भगवान कृष्ण कर रहे हैं। भगवान किसी भौतिक चीज से प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे धन से, हमारे शारीरिक सौंदर्य से, हमारी बुद्धि से या हमारे किसी योग्यता से भगवान बहुत ही आकर्षित होते हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण हमारे गुणों को देखते हैं, हमारे अंदर कौन से गुण हैं, लक्षण कौन से हैं। तो इन लक्षणों को जब हम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि भक्त बनना आसान नहीं है। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो आसान है, परंतु और गहराई में जाके जब देखते हैं और हम पक्के भक्त बनना चाहते हैं, उस समय समझ में आता है कि अरे इतना आसान नहीं है। कोई भी विषय लीजिए, जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, शुरुआत में सोचते हैं, पहले पहले जब ज्ञान मिल जाता है सोचते हैं अरे हमें सब पता हो गया, अभी बहुत कुछ जान लिया, अभी हम डॉक्टर हो गए, शुरुआत ही है बस। लेकिन जैसे किताबों में और अंदर चले जाते हैं तब पता चलता है अरे वाह ये तो बहुत विस्तार में है, इतना है, यहां कैसे सीखेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो एक नौसुखिया विद्यार्थी जब गुरुकुल में भी प्रवेश करता है, बहुत ही जल्दी यहाँ वहाँ कुछ थोड़ी चीजें यहाँ वहाँ सीख लेता है, उसे पता सोचने लगता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया। फिर आगे जाके गहराई में जब पढ़ाई करने लगता है तब उसे पता चलता है कि अरे ये तो इतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। या कोई खेल खेलने की अभिलाषा से जाता है, सोचता है कि मैं इसमें बहुत आगे बढ़ूंगा, शुरुआत में खेल तो बहुत आसान लगता है, फिर बाद में जब अंदर जाते हैं और बहुत सारे अच्छे लोग दिखाई देते हैं जो खेल खेलते हैं, तब पता चलता है इतना आसान नहीं है। उसी तरह से एक साधारण दृष्टि से भक्त बनना बहुत आसान है। क्या करना है, मंदिर में आना है, भगवान के भक्तों के साथ में बैठना है और सुनना है। चलो कभी कभी सो भी जाएंगे तो चलो चल जाता है, लेकिन आते हैं थोड़ा कुछ सुनते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं, दर्शन करते हैं, थोड़ा बहुत जप कर लेते हैं, भक्त है, थोड़ा बहुत भगवान में श्रद्धा होती है तो भक्त हो गए। लेकिन जब और गहराई में जाने लगते हैं, फिर भगवत गीता पढ़ने लगते हैं और भागवतम पढ़ते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, और फिर संसार की जो भावना है वो मन में आने लगती है धीरे धीरे से, फिर दूसरों में हम दुर्गुण देखने लगते हैं या दूसरों के दोष देखने लगते हैं, भले वो हों या ना हो उनमें, लेकिन हमें दिखाई पड़ते हैं। धीरे 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 से हमारे अनर्थ भी, जो अभी तक पूरी तरह से मिटे नहीं हैं, वो उभर आते हैं ऊपर, और फिर पता चलता है कि अरे इतना आसान नहीं है। फिर कभी कभी उत्साह कम होता है, कभी उत्साह अच्छा होता है, कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी ऊब जाते हैं, कभी भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भक्ति को भूल जाते हैं। इस तरह से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और समझ में आता है भक्त होना इतना आसान नहीं है। परंतु हमें जानना चाहिए कि भगवान की परिभाषा क्या है भक्त के संदर्भ में, भक्त कौन होता है। तो इस अध्याय में भगवान ने इसका वर्णन करना शुरू किया है। पहले भी अन्य अध्यायों में भगवान ने कहा है भक्त के गुणों के बारे में, लेकिन यहाँ विशेष करके इसके पहले के जो दो श्लोक हैं 13वें और 14वें में ऐसे कई गुणों का उल्लेख किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी, कि भक्त सच्चा भक्त वो होता है, और वो अंत में कहते हैं मद भक्त सच में प्रिय है। तो ये जो मेरे भक्त होते हैं जिनके ऐसे गुण होते हैं, ऐसे भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं। तो कौन भगवान के प्रिय होते हैं? जिनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। कैसे गुण? अद्वेष्टा, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, जो सबके मित्र हैं, किसी से घृणा नहीं करते हैं, अहंकार उनमें नहीं है, प्रभुत्व या स्वामित्व की भावना उनमें नहीं है, सम दुख सुख क्षमी, दुख में और सुख में समभाव रहते हैं। ये बहुत मुश्किल है, और ये एक चीज हम देखेंगे, सम दुख सुख क्षमी, ये कई बार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जब भगवान ऐसे गुणों का उल्लेख करते हैं, कई बार दोहराते भी हैं कई गुणों को, उनमें से ये एक है सम दुख सुख क्षमी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। जब कोई अनुकूल परिस्थितियां होती हैं भौतिक जीवन में, हमें बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, और जब कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब बहुत दुख होता है। तो समभाव रखना इतना आसान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, जब तब थोड़ा बहुत करने के बाद भी, हम देखते हैं कि हमारा मन हमको बहुत हैरान करता है। और आज के श्लोक में, 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको, जिनके जो उद्विजते मतलब उत्तेजित करना या उद्विग्न होते हैं। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में अनुवाद में लिखते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो किसी को उत्तेजित नहीं करता है, किसी को परेशान नहीं करता है, वो पहला लक्षण है। तो हमें बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए। कार्य करने के पहले हमें सोचना है कि क्या ये सामने वाले के लाभ के लिए है, उनके हित के लिए है, क्या ये प्रिय है, क्या ये सत्य है, क्या ये करुणामय है। तो ऐसे विचार करके हमें कार्य करना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम कुछ कह देते हैं या कर देते हैं, बाद में सोचते हैं, वो कभी कभी वो भी नहीं सोचते। तो बहुत सोचना चाहिए, बचपन से ही हमें ये एक प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि बस अंधाधुंधी में कोई काम करना नहीं। ऐसा नहीं कि बस जो मन में आया काम कर लिया, किसी भी सभ्य समाज में ये स्वीकृत नहीं है बात। कार्य करने के पहले सोचना चाहिए कि दूसरों के मन में दुख पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। हाँ, कभी कभी अनिवार्य होता है दूसरों के मन में दुख पहुंचाना या शरीर में दुख पहुंचाना। जैसे हम किसी वैद्य के पास इलाज के लिए जाते हैं और फिर वो हमें सुई लगा देते हैं शरीर में, हम ये नहीं कह सकते कि आपके कारण मुझे कष्ट हो रहा है, आप मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं? नहीं, वो तो हमारे भलाई के लिए कष्ट दे रहा है। वो थोड़ा बहुत कष्ट हम सहन करेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कभी कभी माता पिता को अपने छोटे बच्चों को डांटना पड़ता है सही रास्ता दिखाने के लिए। वो नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, आगे चल के उनका चरित्र खराब हो जाएगा। तो ये उनका कर्तव्य होता है। उसी तरह से गुरु का कर्तव्य होता है शिष्यों को कभी कभी बताना, कभी कुछ कठोर शब्दों का व्यवहार करना। तो इस तरह से हालांकि यहां बताया गया है कि जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, लेकिन जिनका कर्तव्य है अन्यों को सुधारना, कभी कभी सुधारने की प्रक्रिया में कष्ट पहुंचाए बिना ये नहीं हो सकता। कभी कभी होता है ऐसे, परंतु वो भी बहुत कम। तो हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और दूसरे जब हमसे कुछ कहते हैं या करते हैं उस समय भी हमें मन में दुख ज्यादा नहीं लेना चाहिए। स्वाभाविक है कि हमारे मन में उस क्षण में दुख हो जाए, लेकिन उसको उसके परे शीघ्र ही हो जाना चाहिए। जैसे किसी ने हमें कुछ अपशब्द कह दिए, बुरा लगा, स्वाभाविक है बुरा लगा। ऐसे नहीं कि बस लंबे समय तक सोचते रहे कि इस व्यक्ति ने हमारे विरुद्ध ऐसे बात की। आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें शुद्ध कृष्ण भक्त बनना है। हमारी चेतना भगवान कृष्ण पर केंद्रित होनी चाहिए, ना कि उस व्यक्ति के ऊपर जिसने हमारे विरोध में कुछ कहा है। नहीं? उस समय के लिए कुछ होता है ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ना चाहिए। और जब किसी के कार्यों से या उनके वचनों से हमें कष्ट पहुंचता है, तो हमें इससे जो भला हो रहा है हमारे लिए उसके बारे में सोचना चाहिए। एक छोटी कहानी याद आ रही है कि एक साधु थे, वो गंगा के तट पे बैठ के भगवान का नाम जप कर रहे थे। और ऐसे एक व्यक्ति थे जो वो भी वहां गंगा में आया करते थे, और इस साधु को देखकर उनके मन में बड़ा द्वेष होता था। बार बार उस साधु की निंदा करते थे। तब एक बार कुछ ऐसे बात हो गई, क्योंकि ये साधु की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही थी और इस व्यक्ति को इतनी ईर्ष्या हो गई, तो खैर उसने जाके थूक दिया उस साधु के शरीर के ऊपर। तो साधु ने कुछ किया नहीं, वो अपनी माला वगैरह रख दी और गंगा में स्नान करके आ गए वापस। बिल्कुल एक शब्द भी उस व्यक्ति से कहा नहीं। फिर दूसरी बार इसने ऐसे किया, फिर से वो साधु आराम से उठे, स्नान करके आ गए। ऐसे दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार, लगभग 100 बार हो गया ऐसे। और जब भी वो व्यक्ति ऐसे करते तो वो साधु चुपचाप से उठ के गंगा में जाके स्नान करके फिर से आके बैठ के जप करना शुरू करते। मन विचलित नहीं होता उनका। हमारे ऊपर कैसी कोई ऐसे करे तो 10 दिन जप का नाम नहीं लेंगे, माला कहाँ है वो भी भूल जाएंगे। उसने ऐसे कैसे किया मेरे साथ में, कैसे मैं इसका बदला लूंगा, ये सब विचारों से मन भर जाएगा। लेकिन ये भक्त शांत रहे। जब ये थूक थूक कर थक गए, यो व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसने पूछा, गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है तुमको? तो साधु ने जवाब दिया, अरे गुस्सा क्यों आएगा मुझे, बल्कि मुझे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए क्यों? अरे क्योंकि आपकी वजह से मुझे 100 बार गंगा में स्नान करने का अवसर मिला है। देखो कितना फायदा हुआ मुझे। आपने ऐसा नहीं किया होता तो केवल एक बार स्नान कर लिया होता, या दिन में जो 2-3 बार साधारण से हम करते हैं वही किया होता। अब आपकी वजह से 100 बार मैंने स्नान किया। हर चीज में कोई भला भी होता है। ये सोचकर हमें किसी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए कि चलो वो भी ये सोचे कि इसमें भी कोई भलाई है। नहीं, हमें दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, परंतु अन्यों की वजह से जब हमें कष्ट होता है तो हमें इसके अंदर जो भलाई है वो देखना चाहिए कि हमारे हित के लिए क्या होता है। वो देखना चाहिए। और कई बार ऐसे होता है कि स्वयं भगवान ही आके रक्षा करते हैं, तरह तरह से रक्षा करते हैं। कभी भगवान सोचते हैं कि इस व्यक्ति के भलाई के लिए ये अपमान या ये शारीरिक कष्ट आवश्यक है, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं इन चीजों को होने की अनुमति देकर। होने दो, कष्ट हो रहा है ना, होने दो, क्योंकि इससे भलाई है इसकी। जैसे डॉक्टर कभी कभी सुई घुसा देते हैं शरीर में, होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डॉक्टर को खुशी हो रही है मरीज को ऐसे दर्द की अवस्था में देखकर, परंतु डॉक्टर को पता है इसको सहन, इस कष्ट को सहन किए बिना ये व्यक्ति ठीक नहीं होगा। तो भगवान उसी तरह से परम वैद्य हैं, हृदय के वैद्य है, तो वो जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो यहां कृष्ण कहते हैं यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः। तो हम दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, दूसरे जब हमको कष्ट देते हैं हम उससे विचलित नहीं होते हैं। आगे हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच मे प्रियः। प्रभुपाद जी कहते हैं जो सुख दुख में तथा चिंता और भय में समभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हर एक के जीवन में चिंता है, भय है, सुख है, दुख है। कौन ऐसे कह सकता है कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है? कभी बाहर के लोगों से आएगा, कभी भक्तों से भी आ सकता है यह सुख दुख, कभी परिवार के सदस्यों से भी आता है, सब जगह से आएगा ये। तो इस श्लोक का अभ्यास करने के लिए हमें ज्यादा देर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी, शीघ्र ही हमारे जीवन में ऐसे सब चीजें आते रहेंगी। कभी कभी भक्त भी ऐसे अन्यों को कष्ट देने का कारण बन जाता है, तो ये भी हमें संभल के रहना चाहिए। सुख और दुख में कैसे हम समभाव रहें ये इतना आसान नहीं है। हर चीज में भगवान का हाथ देखना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं, ये स्वयं भगवान ऐसे कर रहे हैं, अन्यथा ये ऐसे संभव नहीं होता। एक भक्त का स्मरण हो रहा है जो दक्षिण भारत में केरल प्रांत में बहुत प्रसिद्ध है आज भी, और उनका नाम है पूंतानम। पूंतानम की कथा एक दो बार शायद हमने बताई भी होगी यहाँ पे। पूंतानम वैसे एक ब्राह्मण कुल के भक्त थे, परंतु इतने शिक्षित नहीं थे, तो संस्कृत का ज्ञान उनको नहीं था, परंतु उनके भक्ति के बल के फल पर उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं की, भगवान की स्तुति की। तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है ज्ञानापानम, जो ज्ञान की धारा है, ज्ञान के जो रत्न हैं, और उसमें भगवान की भक्ति का खूब उन्होंने वर्णन किया है, सुंदर ग्रंथ है। तो उस समय उनके एक समकालीन एक और भक्त थे जिनका नाम था मेलपतुर नारायण भट्टथिरी, जिन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है नारायणियम। ये श्रीमद् भागवत ही है परंतु संक्षिप्त रूप में। तो मेलपथुर नारायण भट्टतिरी ने ये सारांश में भागवत लिखा जिसका नाम है नारायणियम। वो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन शुरुआत के समय में उनके हृदय में थोड़ा एक ऐसे घमंड तो नहीं कह सकते हैं, परंतु एक ऐसे भाव मन में था कि जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं वो क्या जाने कि भगवान की स्तुति कैसे की जाती है। तो जब नम्रता पूर्वक पूंतानम उनके पास आए कि मैंने ये ग्रंथ लिखा है, ये मलयालम भाषा में है, संस्कृत में नहीं है, तो कृपया इसको पढ़िए और बताइए कि क्या इसमें दोष है। तो मेलपतुर ने कहा, ये सब मैं नहीं देखता, संस्कृत में हो तो मैं पढ़ूंगा, ये साधारण भाषा में ये सब चीजें मैं नहीं देखूंगा। तो उन्होंने सोचा कि उनके लिए ये उनके स्थान का युक्त नहीं है, मतलब उपयुक्त नहीं है उनके लिए। केवल संस्कृत में कोई बड़ा, कोई विद्वत्तापूर्ण कोई ग्रंथ लिखे तब वो सोचेंगे कि चलो इसका संपादन करें। तो उन्होंने अपमानित नहीं हुए वो पूंतानम, उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उधर स्वयं भगवान गुरुवायूर, गुरुवायूर अपन कहते हैं केरल में उनको, भगवान कृष्ण हैं, कभी एक दिन हो सकता है वहां भी यात्रा में जाएं। पिछले साल जब यात्रा की बात कर रहे थे तो दो स्थान हमारे सामने थे कि आंध्र प्रदेश जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया था, कुरुक्षेत्र, सिंहाचलम इत्यादि, और दूसरा था केरला, गुरुवायूर और अनंत पद्मनाभ स्वामी इत्यादि। फिर अंततः आंध्रा, आंध्र प्रदेश का विचार हुआ, हो सकता है कोई किसी साल वहां जाएं, वहां राजा कुलशेखर का स्थान है, वहां पे अनंत पद्मनाभ स्वामी विराजमान है, चैतन्य महाप्रभु भी वहां पे गए थे। तो खैर गुरुवायूरप्पन जो है ये बहुत प्रसिद्ध भगवान कृष्ण के विग्रह हैं, मंदिर है ये केरल प्रांत में। तो उन्होंने ही मेलपतुर के कोई रचनाओं में भूल निकाली। एक लड़का आया, छोटा सा लड़का, जो गुरुवायूरप्पन अपने लड़के के रूप में आया, और जब मेलपतुर ने अपने 10 श्लोकों को सुनाया, 10 श्लोकों में गलतियां उन्होंने सुनाई, और तब उनको पता चला कि वास्तव में ये स्वयं भगवान हैं और मुझे कुछ सबक सिखा रहे हैं। तब उन्होंने नम्रता से जाके फिर ज्ञानापान को पढ़ा और उससे बहुत प्रभावित हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें एक भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इनकार किया था उस ग्रंथ को पढ़ने से, स्वयं भगवान गुरुवायूरप्पन ने उसको पढ़ा था, और जो भी ठीक, जो भी कुछ ठीक करना था वो भगवान ने स्वयं कर लिया था। भाषा में, व्याकरण में, कुछ भी ऐसे शब्दों में कुछ था भगवान ने कर लिया था। इसलिए जब मेलपतुर के हाथ में आया तो सब ठीक ठाक रहा। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे अपमानित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए पुंतानम। कई ऐसे कहानियां हैं, जब एक बार पुंतानम विष्णु सहस्र नाम का उच्चारण कर रहे थे क्या बांटा जा रहा है वहां पे? नहीं, ठीक है। बैठ जाइए आप। तो जब विष्णु सहस्र नाम का उच्चारण वो कर रहे थे तो उन्होंने वो इस पंक्ति पर आए, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मर प्रभु। तो अप्रमेय मतलब जिनको हमारे साधारण भौतिक इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, जो हमारे इंद्रियों के पहुंच के बाहर हैं, परे हैं, अप्रमेयः ऋषिकेशः, अर्थात जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, पद्मनाभः जिनके नाभि से एक पद्म पुष्प उत्पन्न होता है जिसमें सारा ब्रह्मांड स्थित होता है, और फिर अमर प्रभु, अमर अर्थात देवतागण। तो देवताओं को कभी कभी अमर भी कहते हैं, हालांकि वास्तव में वो अमर नहीं है। जो भी भौतिक जगत में रहते हैं कोई भी अमर नहीं है, ये मर्त्य लोक है। मर्त्य लोक में सभी लोगों की मृत्यु निश्चित है, परंतु पृथ्वी लोक के निवासियों की तुलना में स्वर्ग लोक के निवासियों की जीवन की अवधि इतनी लंबी है कि हमारे दृष्टि से वो प्राय अमर ही हैं। उनके जीवन की अवधि लाखों लाखों साल है, हमारे पृथ्वी लोक की गणना से इतनी लंबी आयु उनकी है, तो इसलिए उनको अमर कहते हैं। तो अमर प्रभु का मतलब है कि जो देवताओं के प्रभु हैं। तो जैसे पूर्णतानन उच्चारण किया मर प्रभु, तो मेलपतुर वहां थे तो जोर से हंसने लगे, अरे आपको ये भी नहीं पता कि भगवान कृष्ण मर प्रभु नहीं है, वो अमर प्रभु है, आपने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो मरे हुए लोगों के क्या वो स्वामी हैं? तो भी स्वयं उस समय भगवान गुरुवयूरप्पन ने एक आकाशवाणी के द्वारा मेलपतुर को और सबको जो भी उपस्थित थे कहा, नहीं, जो पूर्णतानम ने कहा है ये सही है, वास्तव में मैं मर प्रभु भी हूं, क्योंकि मैं वृक्षों का, मर मतलब वृक्ष भी है, मैं वृक्षों का भी स्वामी हूं, जितने भी औषधियां हैं वनस्पति हैं मैं भी उनका स्वामी हूं, इसलिए जो पूर्णतानम ने कहा वो सही है। तो यद्यपि पूर्णतानम ने बुरा नहीं माना, वो अपमानित नहीं हुए, परंतु भक्त भगवान ने अपने भक्त का अपमान नहीं सहा, उन्होंने आके ऐसे वचन दिया कि हाँ ये जो कहा है सही है। तो जब भक्त अपने मान सम्मान अपने सुख दुख की चिंता नहीं करता है, अपने भय और चिंता की बात नहीं करता है, विचार नहीं करता है, तो भगवान करते हैं, भगवान आके उसका देखभाल सही तरह से करते हैं। और आज भी मैं गया नहीं हूं वहां पे, लेकिन मैंने सुना है कि आज भी एक मिट्टी से बना हुआ एक विग्रह है जिसको मर प्रभु कहते हैं, वृक्ष के रूप में, और ऊपर भगवान का चेहरा है, मुखारविंद है। इस घटना के पीछे वो किया गया था कि कैसे भगवान ने अपने भक्त का मान बचाया। इस तरह से जब भक्त चिंता नहीं करते हैं तो भगवान इन चीजों का देखभाल कर लेते हैं। जहां तक पूर्णतानम की बात आई तो और एक कथा याद आ रहा है कि बहुत सालों से उनको और उनको पत्नी उनके पत्नी को बच्चा नहीं हुआ था, संतान नहीं हुआ। फिर बहुत सालों के बाद बच्चा हो गया, फिर जितने भी सारे संस्कार हैं वो सब कर लिए, जात कर्म इत्यादि, और फिर छठा महीना जब हुआ तो अन्न प्राशन का संस्कार करने का समय आया। तो क्योंकि इतने वर्षों के बाद एक बच्चा हुआ था तो बहुत धूमधाम से इस अनुष्ठान को मनाना चाहते थे पूर्णतानम, तो सारे गांव के निवासियों को बुलाया, तो सारे महिलाएं भी आईं, तो पूर्णतानम के पत्नी ने अपने बच्चे को बिस्तर पे रखा था, बच्चा सो रहा था। तो यहां बाहर के कमरे में सारी व्यवस्था हो रही थी अनुष्ठान की, उधर जो महिलाएं थी वो काफी समय से घर के अंदर थी, तो अनुष्ठान के लिए वो घर के अंदर चले गई अपने कपड़े बदलने के लिए, तो पुराने कपड़े उन्होंने ऐसे बिस्तर पे फेंक दिए, और जिसने पहली बार ऐसे फेंका उसने देखा नहीं कि बच्चा वहां सोया हुआ है, तो कपड़ा बच्चे के ऊपर गिर पड़ा। जो दूसरी जो फिर महिला आई उसने कपड़ा देखा, कपड़े को अपना कपड़ा डाल दिया, ऐसे जितने भी महिलाएं वहां आई एक के बाद कपड़े सारे एक के ऊपर उधर डालने लगे। तो यहां अनुष्ठान की तैयारियां हो रही थी, तो अभी बच्चे को सामने लाना है क्योंकि अन्नप्राशन का समय है, सब सब लोग बच्चे को ढूंढने लगे, बच्चे कहाँ है। तो पूर्णतानम की पत्नी अंदर गई, देखा कि अरे ये सारे कपड़े बिस्तर के ऊपर पड़े हैं, तो क्या हो गया? तो सारे कपड़े जल्दी से डर डर के कपड़े उतारे और नीचे बच्चा था, बच्चा सांस नहीं ले पाया था इसलिए बच्चे ने प्राण त्याग दिया था। अब ये सब के सामने घर में हो गया, तो इतने दुखी हो गए उस समय पूर्णतानम और उनकी पत्नी की, इसका वर्णन करना मुश्किल है। तो हम समझ सकते हैं कि उस समय वहां उस घर में क्या बीता होगा, जिन महिलाओं के कारण ये सब हो गया उनके मन में क्या बीता होगा, जानबूझ के तो नहीं किया, गलती से ऐसे हो गया, और बच्ची की मृत्यु हो गई। तो अनेकों के जीवन में घटनाएं इस तरह की दुख की हो सकती हैं। तो दुख होता है क्योंकि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो होगा। परंतु दुख का सामना हम कैसे करते हैं भक्त होने के नाते, ये महत्वपूर्ण बात है। चिंता, भय, सुख, दुख सब आएगा हमारे जीवन में। सुख में भी कैसे सामना करते हैं दुख, हम जीवन में दुख का भी सामना कैसे करते हैं, अपमान का कैसे सामना करते हैं, अपमान का कैसे करते हैं। तो पूर्णतानम क्योंकि भगवान के भक्त थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का तीव्र आश्रय ग्रहण किया। इतने तीव्रता से आश्रित हुए भगवान के चरण कमलों में कि बाद में जाके उन्होंने मलयालम में एक कविता लिखी। हमें मलयालम तो नहीं आती भाषा, तो उन्होंने एक पंक्ति उसमें ऐसे लिखी थी कि जब बाल कृष्ण, जब बच्चे कृष्ण बच्चे के रूप में मेरे हृदय में उपस्थित हैं, तो और किसी बच्चे की क्या आवश्यकता है। तो उन्होंने अपना सारा जो ध्यान है वो भगवान कृष्ण के ऊपर डाल दिया। इसलिए फिर उनके जीवन में जो भी दुख था अपने बच्चे के देहांत के बारे में, फिर वो मिट गया। तो यही असली चीज है। सुख दुख ऐसा नहीं है कि जब हम भक्त हैं तो जीवन में दुख नहीं आएंगे। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, परंतु यदि हम कृष्ण भावना भावित रहे, यही एकमात्र रास्ता है समभाव रहने का। अन्यथा हम इतने विचलित हो जाएंगे कि हमारे मानसिक संतुलन को खो बैठेंगे, फिर हमारी साधना भी करना भूल देंगे, भगवान में श्रद्धा हम खो बैठेंगे, ये भी अच्छा नहीं है। भगवान को भी हम दोष नहीं दे सकते। पूर्णतानम ने ऐसे दोष नहीं दिया भगवान को कि आपने ऐसे क्यों किया। आगे चल के उन्होंने एक और रचना ग्रंथ लिखा, संतान गोपालम पान, पान मतलब वो एक छंद है। तो संतान गोपालम, आज भी दक्षिण भारत में कई बार केरल वगैरह में ऐसे वो विधि वगैरह करते हैं। तो संतान गोपालम से हम जान सकते हैं कि जिनको जीवन में कभी कभी कोई कष्ट है, गृहस्थ आश्रम में होके बच्चे नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ, अभी क्या कर सकते हैं, भाग्य में जो है सो है, बस भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लीजिए, भगवान कृष्ण को ही अपना बच्चा मान लीजिए। और इतना निश्चित है कि ये बच्चा बड़े होकर भी आपको कोई धोखा नहीं देगा। साधारण दुनिया के बच्चे हैं, बड़े होकर जो है बहुत कष्ट देंगे। राजा चित्रकेतु की कथा आप जानते हैं ना। तो राजा चित्रकेतु और उनके बहुत सारे पत्नियां थीं, कई सालों तक उनके कोई बच्चे नहीं हुए। तो इतने चिंतित हो गए थे राजा चित्रकेतु कि क्या किया जाए। बहुत से उपाय उन्होंने ढूंढ निकाले थे लेकिन कोई काम की नहीं थे। तो एक बार उनके महल में अंगिरा ऋषि आए, तो अंगिरा ऋषि ने उनके ऊपर कृपा की और कहा कि ठीक है, इतना ही आप चाहते हो तो ये मैंने पायस दिया है, इस पायस को अपनी पत्नी को खिलाओ और फिर आपके आपकी पत्नी जो है ये वरिष्ठ जो रानी है वो गर्भवती हो जाएंगी। तो फिर ऐसे हुआ और वास्तव में वो गर्भवती हो गई और एक बच्चे का जन्म भी हुआ। लेकिन जिस समय राजा अंगिरा ऋषि ने वो पायस दिया था तो उन्होंने ये भी कहा, ये बच्चा आपके लिए हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। तो उस समय चित्रकेतु महाराज को ये स्वतंत्रता थी कि वो कहे कि नहीं मुनिवर, मैं अभी संतुष्ट हूं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। जब भाग में नहीं लिखा है तो क्या करेंगे। परंतु जब ऐसे पायस मिला और अंगिरा ऋषि ने कहा कि ये बच्चा आपके लिए हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा, तो अपने मन ही मन में राजा ने सोचा, अरे ये तो सभी के साथ होता है,
हर एक घर में बच्चे होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, शुरुआत में माता पिता की बात मानते हैं, बाद में बात नहीं मानते हैं, कभी ब्रह्मचारी भी हो जाते हैं और कितने सी चीजें करते हैं बच्चे, कभी यहाँ वहां शादी कर देते हैं हमारे अप्रसन्न होने पर भी, कभी उल्टा कुछ जवाब दे देते हैं, कितना कुछ होता है, ये संसार की रीत है। लेकिन कम से कम बच्चा तो होगा, थोड़ा बहुत सुख तो मिलेगा हमें, आगे चल के होगा जो होगा। तो ऐसे सोचकर उन्होंने उस पायस को स्वीकार कर दिया। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो दोनों रानी थी जिसका नाम था कृतद्युति और राजा चित्रकेतु, कहां से आए, और राजा चित्रकेतु उनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और राजा इतने आनंदित हुए थे कि देखिए, जब हम सुख को सहन नहीं कर सकते ना, सुख में जब हम समभाव नहीं रहते हैं, उसे आगे चल के किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। देखिए, केवल दुख में समभाव रहने की बात नहीं है, सुख में भी समभाव रहना कितना जरूरी है। तो राजा के चित्रकेतु को इतना आनंद आया था बच्चे के जन्म के कारण कि उन्होंने अपना सारा ध्यान केवल इस एक रानी के ऊपर दिया, रानी कृतद्युति। और अन्य जितने भी रानियां थी उनके लापरवाही की, उनके प्रति उनके साथ बैठते नहीं थे, बात नहीं करते थे, समय नहीं था, सारा समय इस एक रानी के साथ और इस बच्चे के साथ था। तो ये दूसरी रानियां थी, इनको बहुत दुख होने लगा। अब वो भी दुख में समभाव नहीं थी, ये सुख में समभाव नहीं थे, वो दुख में समभाव नहीं थी। उनको सोच लेना चाहिए था कि ठीक है, हमारा भाग्य है ऐसे, अब क्या करें। लेकिन वो सहन नहीं कर सके इस दुख को, और उनके मन में ईर्ष्या बहुत होने लगी। ईर्ष्या इतनी हुई कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया और उन्होंने इस बच्चे को विष पिला दिया, जबकि उस बच्चे की माँ और उसकी जो दासी थी वो बाहर गई थी, जो कोई नहीं था कमरे में। जब वो फिर से आ गई, महारानी की जो दासी थी वो आ गई, उन्होंने देखा कि बच्चा सांस नहीं ले रहा है और उसे पता चला कि बच्चा मर चुका है, तो उसने चीखना शुरू कर दिया। रानी वहां पर आई, वो भी जोर जोर से रोने लगी। राजा चित्रकेतु तक खबर पहुंची, जो उस समय दरबार में बैठे थे, वो भागते 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 आ गए। उनका मुकुट गिर गया, उनके बाल बिखर गए, वो फिसल रहे थे, गिर रहे थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे, बिल्कुल होश ठिकाने नहीं रहे उनको। एक राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए, जिस सम्मान से रहना चाहिए, वो कुछ सोच नहीं रहे थे उस समय। जोर जोर से रो रहे थे और अपने बच्चे के शरीर, मृत शरीर के पास में आके बैठ के वो जोर जोर से बोल रहे थे बच्चे से कि ऐसे छोड़ के नहीं जाना, फिर से आना। फिर रानी भी बहुत जोर जोर से बोल रही थी कि कहां छोड़ के गए हो हमें, फिर से आ जाओ। तो देखिए, सुख दुख में कैसे उतार चढ़ाव। पहले बहुत दुख था तो हमेशा उदास रहते थे, फिर बच्चे का जन्म हुआ, फिर सुख की सीमा नहीं रही, किस तरह का व्यवहार हुआ, फिर से अब दुख हो गया, बहुत ज्यादा दुख हो गया, फिर से देखिए कैसा व्यवहार हुआ। इस तरह से राजा चित्रकेतु को इतना दुख हुआ कि वो गिर पड़े, बेहोश हो पड़े, फिर से होश आ गया, फिर से बेहोश हो गए, इस तरह से चला। उधर अंगिरा ऋषि के कानों तक खबर आई कि राजा की ये दशा है और बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो नारद मुनि के साथ में वो आए वहां पर, और राजा ने ऋषियों से बहुत प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को वापस आप लेकर आइए। तो ऋषियों ने उनको समझाने का प्रयास किया कि जो प्रारब्ध के अनुसार होता है, जीवन की अवधि जितनी हमारी होती है जन्म के समय, तो उतनी ही होती है, तो प्रकृति के नियमों को ऐसे बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन एक नहीं सुनी उनकी राजा ने, नहीं नहीं, आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। तो फिर नारद मुनि ने जाके उस बच्चे के शरीर के पास बैठ के वो कहने लगे बच्चे से कि वापस आ जाओ, आत्मा का संबोधन करके कहने लगे कि आत्मा तुम इस शरीर को छोड़ के चले गए हो, अब वापस लौट के आ जाओ। और भगवान नारद मुनि की योग शक्ति के बल पर वो आत्मा पुनः उस शरीर में प्रवेश कर गया। साधारणतः ऐसे कभी नहीं होता है, एक बार हमेशा के लिए जब आत्मा छोड़ के जाता है शरीर को तब लौट के नहीं आता। इस बार आ गया और फिर वो बच्चा उठ के बैठा और बात करने लगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है वापस। नारद जी ने कहा आपके माता पिता यहाँ हैं, आप उनको छोड़कर चले गए, तो कौन से माता पिता की बात करते हैं आप, मैं अभी जहां जन्म लेने के लिए जा रहा हूं वहां भी मेरे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जब मैं ये राजा और रानी का पुत्र था, राजकुमार बना था, इस जन्म के पहले भी मेरे कोई माता पिता थे, उसके पहले जन्म में भी मेरे कोई माता पिता थे, ऐसे अनेक जन्मों से मेरे नाना कितने सारे माता पिता होते रहे हैं, तो मेरे सही माता पिता कौन है। इस तरह से ये आत्मज्ञान कहने लगा ये बच्चा। ये सब तो ऋषियों की योजना थी। तो ऐसे आत्मज्ञान सुनकर फिर महाराज चित्रकेतु और उनकी रानी कृतद्युति का मन थोड़ा शांत हो गया और फिर वो समझ पाए कि ये संसार कैसा है और कैसे उन्हें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। फिर वो बच्चे ने अपना उपदेश दिया और फिर से आत्मा शरीर छोड़कर चली गई। और आगे चल के महाराज चित्रकेतु एक बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। तो जो दुख सुख होता है उससे हमें सीख लेना चाहिए और दुख को और सुख को दोनों का प्रयोग करना चाहिए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। दुख और सुख का सामना, चिंता और भय का सामना भक्त इस तरह से करते हैं। और एक उदाहरण मन में आ रहा है, वो अद्वैत आचार्य के पुत्र का, नहीं क्षमा कीजिए, श्रीवास ठाकुर के पुत्र का। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नवद्वीप में श्रीवास ठाकुर के आंगन में नृत्य करते थे। तो एक बार जब ऐसे रात भर नृत्य हो रहा था उनके घर में, उनके जो एक पुत्र थे श्रीवास ठाकुर के, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो घर में अंदर जो महिलाएं थीं वो सब जोर जोर से रोने लग गए और श्रीवास ठाकुर को बुलाया, कोई एक व्यक्ति आए उनको बुलाने के लिए। तो श्रीवास ठाकुर गए कि क्या बात है, इतना जरूरी क्या काम है कि मुझे महाप्रभु के संकीर्तन करने के कार्यक्रम से आपने दूर बुला लिया है। उन्होंने कहा देखो देखो हमारा बच्चा मर गया है। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, देखा और फिर कहने लगे, अरे महाप्रभु के कीर्तन करते समय हमारे घर में हमारे बच्चे ने प्राण त्याग किया, तो इससे और शुभ देह त्याग क्या हो सकता है किसी के लिए। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं और ये बच्चा तो कितना और सौभाग्यशाली है। परंतु महिलाएं बात को नहीं मान सकी, बहुत जोर जोर से रो रही थी। तो श्रीवास ठाकुर ने उससे कहा कि ऐसे यदि और जोर से आवाज आएगा और महाप्रभु की कीर्तन खराब हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर श्रीवास ठाकुर फिर से कीर्तन में चले गए और उधर महाप्रभु थोड़ी देर कीर्तन करते रहे और फिर बाद में उन्होंने पूछा, कीर्तन रोक लिया, नृत्य करना रोक लिया और कहा कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, मुझे कहीं दुख लग रहा है कि कोई ना कोई तो दुखी है यहां, क्या बात है श्रीवास, कोई ऐसी घटना हुई है क्या, दुखद कोई घटना हुई है। नहीं प्रभु, कोई घटना नहीं, आपके कीर्तन करते समय क्या दुख होगा, आनंद ही आनंद है। लेकिन फिर दूसरे भक्तों ने उनको बताया महाप्रभु को कि ऐसे ऐसे श्रीवास ठाकुर के पुत्र का देहांत हो गया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया, उनके आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लग गए कि ऐसे श्रीवास ठाकुर जैसे भक्त को मैं कैसे त्याग सकता हूं, अपने पुत्र के देह त्यागने के बाद भी वो हमारे कीर्तन के अनुष्ठान में वो कोई विघ्न नहीं लाना चाहते थे, इतनी श्रद्धा, इतना कृष्ण प्रेम। सारे भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर महाप्रभु अंदर गए, बच्चे के पास गए और बच्चे के शरीर के ऊपर अपने कर कमल रखे और उनको बुलाया, जागो वापस उठो। और बच्चा जागृत हुआ और बच्चे ने ठीक उसी तरह से उपदेश दिया जैसे कि महाराज चित्रकेतु के पुत्र ने दिया था कि मुझे अभी आगे जाना है, अभी अगले मुझे माता पिता राह देख रहे हैं। तो महाप्रभु के होते हुए महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र है वो उसे भले पुनर्जन्म कैसे होना था, लेकिन फिर भी वो ऐसे कह रहा था बच्चा। और इसके द्वारा महाप्रभु और श्रीवास ठाकुर सारे दुनिया को एक उपदेश देना चाह रहे थे। और इसके बाद फिर बच्चे ने, वो आत्मा ने फिर से देह त्याग किया और फिर जो अंतिम क्रियाएं इत्यादि हैं वो सब कर दी। एक श्लोक याद आ रहा है, कस्यत्वम कह कुत आयात, काते कांता कस्ते पुत्र कस्यत्वम कह कुत आयात, तत्त्वम चिंतीय तदीह भ्रातः, कि हे मेरे भाई जरा इन तत्वों के ऊपर चिंतन करना कि कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारे पति है, कौन बच्चे हैं, कौन माता पिता है, कौन क्या है, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा कौन है, ये सब चिंता करो। ये सब क्षणिक है जीवन, थोड़े समय के लिए हम आते हैं फिर यहां से निकल जाते हैं। तो ये आत्मज्ञान का चिंतन करना भी आवश्यक है, परंतु आत्मज्ञान के परे है भगवत ज्ञान। केवल आत्मज्ञान से विशेष करके इस कलयुग में अपने मन को सांत्वना देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब भगवान की भक्ति में हमारा चित्त मग्न रहता है तो भी जितने भी सारे कठिनाइयां आएंगी हमारे जीवन में, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम हमारे लिए एक कवच बन के रहेगा। फिर सुख में भी हम ज्यादा उत्तेजित नहीं होंगे, दुख में भी ज्यादा विचलित नहीं होंगे। इस तरह से हमारे जीवन को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो हमारी श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? श्रद्धालु भक्तों का संग करने से, और भक्तों के संग में आके श्रवण करना, कीर्तन करना, जप करना, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करना, उत्सव मनाना, सेवा करना, विविध प्रकार से नम्रता से भक्तों के सेवक बन के रहना, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, ऐसे नित्य नियम से हम करते रहेंगे अवश्य हमारी श्रद्धा बढ़ती रहेगी। और फिर ऐसे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे जिससे कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर ये सत्य होगा, सच में प्रियः। फिर भक्त जब कृष्ण हमारी ओर देख के बोलेंगे कि हाँ ये भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है क्योंकि ऐसे गुण मैं इस भक्त में देख रहा हूं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ नहीं प्रश्न है? ठीक। हरे कृष्णा।
आज के प्रवचन में आपने भगवान और भक्तों की कथा बन रही उसमें
पुंतानम
पुंतानम और चित्रकेतु और
श्रीवास ठाकुर,
तो वो बच्चों को भक्तों की और बच्चों की भी कहानी बताई, लेकिन इसमें दो बच्चों को भगवान फिर से आके एक जन्म एक प्रकार गया हुआ आत्मा पर फिर से लाते हैं, और इसमें भी भगवान ने वो पहले
पुतानम
उन बच्चों को भी ऐसा ही करते तो वो पुतानम भी खुश हो जाते थे और सुनने वाले भक्त भी खुश हो जाते।
भगवान जो उचित है उनकी दृष्टि से वही करते हैं। भगवान की बुद्धि, भगवान का ज्ञान, भगवान की दृष्टि, भगवान का उद्देश्य, भगवान का प्रेम, भगवान की कृपा ये परिपूर्ण है। इसलिए भगवान जो भी कुछ करते हैं वो सबके भलाई के लिए ही करते हैं। तो जब ऐसे हुआ पूर्णतनम के साथ, तो वो भी भगवान की योजना से हुआ ऐसे कि वो माताजी ने जाके पे वो बच्चे के ऊपर कपड़ा कैसे डाल दिया। तो भगवान की योजना के अंतर्गत सब कुछ होता है, जो भलाई के लिए होता है जो होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लापरवाही करनी चाहिए, हमें ध्यान से सब करना चाहिए। लेकिन अनायास जब हो जाता है कुछ जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, तो हमें जानना चाहिए कि इसके पीछे भगवान का हाथ है। हमारा प्रारब्ध आदि है वो तो है ही, लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं? केवल शोक करते रहने से काम कैसे चलेगा? स्वाभाविक है, इंसान होने के नाते हम शोक करेंगे थोड़े समय के लिए। और जब अन्य भक्तों के जीवन में कोई कठिनाई आती है, किसी भी प्रकार की कठिनाई, उनके साथ हमें रहना चाहिए। ऐसे नहीं कहना चाहिए काते कांता कस्ते पुत्र है संसार हो मति व विचित्र है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। उस समय उनका साथ देना चाहिए, उनको सांत्वना देनी चाहिए। परंतु धीरे धीरे नाम संकीर्तन करते हुए जब उनका मन थोड़ा शांत हो जाएगा, तब फिर और आध्यात्मिक ऐसे चर्चाएं हो सकती हैं जिनसे कि वो समझ सकेंगे कि अंततः ये भगवान की योजना है और सबके भलाई के लिए है। ठीक है, ठीक है। और तीव्रता से भक्ति करने का क्या मतलब है, हम कैसे कर सकते हैं? तीव्रता से भक्ति करने का मतलब है कि जो भक्ति के लिए अनुकूल है उन चीजों को बड़े दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो लाभदायक नहीं है, उन चीजों को दृढ़ता पूर्वक त्यागना। बस ये है तीव्रता की भक्ति। जितने दृढ़ता से हम अनुकूल चीजों को स्वीकार करेंगे और प्रतिकूल चीजों को त्याग करेंगे, उतनी ही तीव्रता से हमारी भक्ति होगी। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।